पृष्ठ संख्या 90। हारून अल रशीद ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर किसी प्रकार का झगड़ा भविष्य में न होने देने की चेष्टा की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। हारून के अमीन और मामून दो लड़के थे। ये दोनों खलीफा पद के लिए पृष्ठ संख्या 91 लड़ पड़े। समूचे इस्लामी साम्राज्य में अशांति छा गई। इन दोनों की लड़ाई वास्तव में अरबों और ईरानियों की लड़ाई थी। अब्बासियों के खलीफा होने के समय से ही ईरानियों का प्रभाव बढ़ता गया और अरबों का नष्ट हो गया। इसके लिए अरबों की चेष्टा चलती रहती थी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। जब तक बरमक वजीरों का बोलबाला रहा, ये झगड़े शांत थे और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण अरबों और ईरानियों में खुलकर लड़ाई होने का कभी मौका नहीं आया। अमीन खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी जुबैदा, जो उसकी चचेरी बहन भी थी, का लड़का था और मामून एक ईरानी दासी से पैदा हुआ था। ये दोनों अभी अल्पवयस्क थे और दोनों ही अपने अपने वजीरों के प्रभाव में थे। अमीन का वजीर फजल अभी सह था और फजल अभी राबिया मामून का वजीर था। अमीन बड़ा था और उसी को हारून अल रशीद ने अपना उत्तराधिकारी चुना था और उसके बाद मामून को। रशीद ने अपने उत्तराधिकार संबंधी बातों की दो प्रतियां मक्का में रख छोड़ी थीं। जब अमीन और मामून में किसी प्रकार समझौता नहीं हो सका तो अमीन ने उन दोनों प्रतियों को फाड़ डाला। इसके बाद दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। अपने बड़े भाई अल अमीन और चाचा इब्राहिम इब्न अल महदी, वह भी खलीफा पद के लिए अपने को उचित अधिकारी मानता था, के साथ मामून की लड़ाई प्रायः 6 वर्षों तक चलती रही। विजय मामून की ही हुई। मामून का शासनकाल भी अब्बासी खलीफों के युग का एक महत्वपूर्ण काल रहा। विद्रोह और आपसी झगड़े तो उस काल के सभी शासकों के समय में प्रायः कम या बेशी होते ही रहे। मामून का शासन भी उसका अपवाद नहीं था। वह पहले बगदाद में आने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि वह अरबों की शक्ति का केंद्र बना हुआ था। शिया संप्रदाय वालों की ओर उसका विशेष झुकाव था। यह चीज उसमें इतनी अधिक थी कि उसने अली के एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इसके लिए उसको अपने परिवार वालों के ही विरोध का पृष्ठ संख्या 92 सामना करना पड़ा। वह सनातन पंथी बिल्कुल ही नहीं था। मुतजिला सिद्धांतों को भी उसने प्रश्रय दिया। इसके समय में ही शक्तिशाली सेनापतियों तथा अन्य दूसरों ने शक्ति संचय कर अपना अपना राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। खलीफों के प्रभाव का ह्रास धीरे धीरे इसी के समय होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन बाद में तो यह सर्वत्र स्पष्ट हो गया। जिन लोगों ने इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की थी और जिनमें युद्ध करने की शक्ति थी, वे उससे विरत होने लगे। उनमें विलास प्रियता भी अधिक से अधिक बढ़ गई। मामून के समय तक कला, विद्या, दर्शन, साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इन क्षेत्रों में जिस तीव्र गति से उन्नति हुई, वह आश्चर्यजनक है। इतने कम समय में उन सभी विषयों की पुस्तकों का अरबी में प्रणयन हुआ, अथवा वे अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी, ग्रीक आदि से अनुदित हुईं। मामून के बाद इशाक खलीफा हुआ। इशाक भी हारू अल रसीद का ही पुत्र था, लेकिन खलीफा होने के साथ ही साथ उसने मुतसिम के लिए अपना पद छोड़ दिया। फौज मामून के पुत्र अब्बास के पक्ष में थी, लेकिन वह अपने चाचा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। वह भी मामून की तरह से सनातन पंथी नहीं था और मुतजिला सिद्धांत का पक्षपाती था, लेकिन वह सनातन पंथियों के विरुद्ध सफल नहीं हो सका। और ऐसा समय आया कि मुतजिला सिद्धांत के मानने वाले जहां पहले दूसरों का दमन कर रहे थे, वहां वे स्वयं दमन का शिकार बन गए। मामून के समय तक ईरानियों की बनी रही, लेकिन मुतसिम ने अपनी रक्षा के लिए तुर्की संरक्षकों को रखा। अभी तक खलीफों का दरबार बगदाद में था, उसे उसने हटाकर सामर्रा में बनाया, जो थोड़े ही दिनों में एक सुंदर शहर बन गया। उसके बाद का 400 वर्षों का इतिहास अब्बासी खलीफों के क्रमशः पतन का इतिहास है। वैसे भी इस समय तक समूचे इस्लामी साम्राज्य पर खलीफों का अधिकार बहुत कुछ खत्म हो चुका था। पृष्ठ संख्या 93। अब्बासी खलीफों के शासन का यह पिछला युग, जो लगभग 400 वर्षों तक चलता रहा, वास्तव में तुर्की सेनानियों के शासन का युग था। उन्हीं के इशारे पर सब कुछ होता रहा। किसी भी खलीफा में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह इन तुर्कों का विरोध कर सके। किसी खलीफा ने अगर चेष्टा भी की तो थोड़े ही दिनों में या तो वह हटा दिया गया या उसकी हत्या कर दी गई, अथवा चुपके से तुर्कों की बात मान लेनी पड़ी। इस काल में षड्यंत्रों और हत्याओं की भरमार रही। एक के बाद एक खलीफा आते गए और ख़त्म होते गए, और यह क्रम चलता रहा। अल मुतवक्किल सन 847 ईस्वी से सन 861 ईस्वी तक के काल में तुर्की के महत्वाकांक्षी सैनिकों का प्रभुत्व इतना बढ़ गया था कि वे अरबों को सब प्रकार से नीचा दिखाने लगे। इससे ईरानी भी नहीं बच पाए। वैसे अरबों की अपेक्षा उन पर कम अत्याचार हुआ। ये सैनिक वास्तव में पहले के युद्ध में पकड़े गए कैदी थे। इनके अत्याचारों से अरब जनता घबरा उठी। सन 861 ईस्वी में मुतवक्किल नशे की हालत में तुर्की अंगरक्षकों द्वारा मार डाला गया। अपने पुत्र मुंतसीर के इशारे पर उसकी हत्या की गई थी। मुंतसीर खलीफा तो बना, लेकिन एक वर्ष बीतते न बीतते वह भी मार डाला गया। उसके बाद अल मुस्तमिन, अल मुतज और अल मुहतदी क्रमशः खलीफा हुए, लेकिन 9 वर्ष से अधिक वे राज्य नहीं कर सके। तुर्की सैनिकों द्वारा वे सभी मार डाले गए। केंद्रीय शक्ति के कमजोर हो जाने के कारण इधर उधर कई छोटे मोटे राज्यों की भी स्थापना इस काल में हुई, जो दीर्घ काल तक टिके रहे और अपनी सीमा में शांति बनाए रहे। उस काल में कई जगह और भी खलीफा थे, जैसे एक मिस्र में, एक मोरक्को में, एक स्पेन में। ये खलीफा एक बात में समान थे, वे सभी कुरैश वंश के थे। तुर्कों की यह शक्ति कुछ समय के लिए कम हो गई थी जब मुहतदी खलीफा हुआ। मुहतदी शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति था। उसने तुर्कों की शक्ति क्षीण कर दी और यह बात कुछ दिनों तक चलती रही। मुहतदी ने पृष्ठ संख्या 94 जो व्यवस्था ला दी थी, वह प्रायः उसके बाद 4 खलीफों के शासनकाल तक चली। सन 869 ईस्वी से लेकर सन 907 ईस्वी तक तो तुर्क कुछ न कर सके, लेकिन बाद में उनकी फिर से बनाई। खलीफा युग का अंत मंगोलों के आक्रमण के कारण हुआ। सन 1258 ईस्वी में हुलागू अपनी मंगोल फौज के साथ बगदाद पर चढ़ आया और उस पर कब्जा कर लिया। खलीफा का शासन, जो केवल नाम मात्र के लिए ही रह गया था, वह भी इसके बाद खत्म हो गया। अनेक छोटे छोटे राज्य उस समय उठ खड़े हुए। इन राज्यों में कुछ प्रधानतया राजनीतिक आधार पर संगठित थे और कुछ का आधार धार्मिक था। अरब देश ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका आदि में सर्वत्र इस प्रकार के राज्य दीख पड़ते हैं। ईरान में ताहिरी, सफारी, समनी, बुवैही आदि एक के बाद एक होते गए। अफगानिस्तान में गजनवियों का राज्य स्थापित हुआ। महमूद गजनी, जिसने भारतवर्ष पर 17 बार चढ़ाइयां की, सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन एक तुर्की गुलाम का पुत्र था और उसी ने गजनवी वंश की स्थापना की। यह वंश कट्टर इस्लाम का अनुयायी था। इसने मुतजिला सिद्धांत के मानने वालों का दमन किया। महमूद ने अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया, लेकिन वह बहुत दिनों तक रह नहीं सका। धर्म का आधार लेकर अफ्रीका में फातिमियों का वंश खड़ा हुआ। इस वंश ने अपने आप को ही खलीफा पद का उचित अधिकारी बतलाया। ये लोग शिया थे। मिस्र में सन 1171 ईस्वी तक शिया संप्रदाय वालों का अधिकार बना रहा। ये लोग खलीफा के विरोधी थे। अयूबियों ने इनके हाथ से अधिकार छीनकर फिर से सुन्नी संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार से सेल्जुकों का प्रभुत्व भी बहुत दिनों तक बना रहा। इन लोगों ने गजनवियों के साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों को अपने अधिकार में कर लिया। सन 1055 ईस्वी में तुगरिल बेग ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। अब्बासी खलीफों के समय में राजनीतिक अवस्था इसी प्रकार की बनी रही, जिसका प्रभाव समाज, साहित्य, धर्म आदि पर पड़ता रहा। पृष्ठ संख्या 95। अब्बासियों के शासन के प्रारंभिक काल में साहित्य, विज्ञान, धर्म के तात्विक विवेचन आदि पर खूब ध्यान दिया गया। अब्बासी खलीफा का इस मामले में खूब सतर्क थे। उनका दावा था कि वे फिर से इस्लाम को सुदृढ़ कर रहे हैं और शासन के संबंध में वे कुरान और सुन्ना का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा उन्होंने किया हो, ऐसी बात नहीं थी। अपने शासन को सुसंगठित तथा लोकप्रिय बनाने के लिए धर्म के बाह्याचार पर उन्होंने अधिक जोर दिया। उमैया खलीफों के काल में धर्म पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। इन्हें हटाने के लिए जो क्रांति हुई और जिसने अब्बासियों को खलीफा के पद पर आसीन कर दिया, उसमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस बात की आशा का संचार लोगों के मन में कराया गया कि अब्बासी खलीफों का काम फिर से धर्म को सुप्रतिष्ठित करना है। यही कारण है कि जहां उमैया के काल में शरीयत और सुन्ना के पंडित और धार्मिकता पर जोर देने वाले शासन से अलग से थे, अब्बासियों के समय में वे शासन का एक अंग बन गए। खलीफों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हो गया। काजी का स्थान बड़े सम्मान और दायित्व का था। इस काल में विचारों का स्वातंत्र भी रहा। मुतजिला सिद्धांतों को प्रश्रय देने वाले 2 खलीफा भी थे, लेकिन यह विचार स्वातंत्र बाद के अब्बासी खलीफों के समय में प्रायः नहीं रहा। धर्म के मामले में इस तरह की स्वतंत्रता का परिचय देने वाले या तो निर्वासित हुए या बुरी तरह से अपमानित कर उनकी हत्या कर दी गई। खलीफा मुतवक्किल ने तो अपने शासन में इस बात पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया कि सनातन पंथी कट्टर विचारों को छोड़कर किसी प्रकार के विचार को प्रश्रय न दिया जाए। मुतजिला सिद्धांत के मानने वालों का बुरी तरह से दमन किया गया। मुतवक्किल सन 847 ईस्वी से लेकर सन 861 ईस्वी तक खलीफा बना रहा। इस काल में अली तथा शिया संप्रदाय वालों के प्रति घृणा के भाव में अत्यधिक अभिवृद्धि हुई। मुतवक्किल ने शिया मुसलमानों के विरुद्ध किस प्रकार से अपनी घृणा का प्रदर्शन किया, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है, पृष्ठ संख्या 96, कि उसने कर्बला के स्मारक को तोड़वा फोड़वा कर उस जमीन को जुतवा दिया और वहां फसल बुनवा दी। हजरत अली का मजाक उड़ाने के लिए अपने दरबार में एक मस्खरे के पेट पर तकिया बंधवाकर वह दरबारियों के सामने उपस्थित कराता था। कहा जाता है कि उसका चेहरा हजरत अली से मिलता जुलता था। हजरत अली बाद में चलकर मोटे हो गए थे, इसलिए उस मस्खरे के पेट पर तकिया बांध दिया जाता था। ईसाइयों और यहूदियों के विरुद्ध भी उसने फरमान निकाले। उन्हें एक विशेष ढंग की पोशाक भी पहननी पड़ती थी और सिवा गधे और खच्चरों के वे दूसरी सवारी नहीं कर सकते थे। उनके गिरजों या मंदिरों को उसने या तो ढहवा दिया या मस्जिदें बनवा दी। इनके समय में जो विचारों की स्वतंत्रता पर रोक लगी, वक्रम या बेशी आज तक चली आ रही है। इसके बाद से जितनी भी विचारधाराएं या साधनाएं इस्लाम के अनुयायियों में दीख पड़ी, उन सब में प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे अपनी बातों का अनुमोदन कुरान, हदीस या सुन्ना से करते हैं। ईसा की नवी शताब्दी में अबुल हसन अल अशारी ने धर्म के नियम कानूनों को ऐसा रूप दिया जिसमें विचार स्वातंत्र का स्थान नहीं रह गया। अशारी इस्लाम धर्म के बहुत बड़े स्मृतिकार थे। उन्होंने ही इस्लामी स्मृति का प्रवर्तन किया। ईसा की नवी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ईसा की 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का काल राजनीतिक दृष्टि से महत्व का नहीं है, लेकिन इस काल की एक विशेषता रही है कि एक ओर तो कट्टरता की वृद्धि होती है और दूसरी ओर धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्रों में नई प्रवृत्तियों का उदय होता है। यद्यपि यह बात बड़ी अद्भुत और असंगत सी प्रतीत होती है कि कट्टरता के कारण उनका दबना तो दूर रहा, उल्टे वे और जोर पकड़ती हैं। हम देख चुके हैं कि इस्लाम से पूर्व अरबों की स्थिति कैसी थी और इस्लाम के उदय के बाद से उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आया। हम यह भी देख चुके हैं कि इस्लाम के आविर्भाव के बाद की 2-3 शताब्दियों में, पृष्ठ संख्या 97, एक ओर तो अरबों के साम्राज्य का विस्तार होता रहा और दूसरी ओर साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी प्रसार होता रहा। अरबी भाषा इस्लामी साम्राज्य की राजनीति, धर्म, साहित्य और दर्शन की भाषा बन गई। अरब से बाहर यह अन्य समृद्ध भाषाओं और संस्कृतियों के संस्पर्श में आई और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अरब भिन्न जातियों ने इसे समृद्ध किया। अरबों के लिए यह संभव नहीं था कि वे अपनी पिछड़ी हुई सभ्यता और संस्कृति के बल पर संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में अन्य जातियों की बराबरी कर सकते। अरबी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में फारसी साहित्य और ईरानियों का बहुत बड़ा हाथ है। अरबी भाषा को अपनाकर अरब से बाहर की उन जातियों ने धार्मिक और अन्य प्रकार के साहित्य की सृष्टि की और उस काल की अरबी भाषा का जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उन्हीं की देन है। ऐसे बहुत ही कम अरब हैं जिन्होंने इस दिशा में उनके जैसा कुछ किया हो। कुछ ऐसे भी अरब हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की है, लेकिन वे अरब जाति के होते हुए भी अरब से बाहर रहने वाले थे और उनकी शिक्षा दीक्षा विदेशी भाषा में हुई थी। उनकी मातृभाषा भी अरबी नहीं थी। हमारे अध्ययन के लिए इस बात को दृष्टि में रखना आवश्यक है कि प्रारंभिक काल में इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हुए उनमें विद्यानुराग अथवा बौद्धिकता मूलक चिंतन का अभाव दिख पड़ता है। साहित्य, दर्शन आदि की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे। उनमें इस्लाम धर्म के प्रति, जिसके साथ उनका अभी भी परिचय हुआ था, एक बहुत बड़ा उत्साह था। हजरत मोहम्मद के वचनों और आचरणों का पालन वे वफादारी से करने की चेष्टा करते थे। उस समय के अरब देश के निवासी कला, विज्ञान, साहित्य की दुनिया से अपरिचित थे। मोहम्मद साहब के वचनों तथा हदीसों आदि को मुखस्त कर लेने वालों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। लगभग 9वीं शताब्दी तक यही क्रम चलता रहा। अरबों को उस समय तक इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। उनका काम लड़ाइयाँ, पृष्ठ संख्या 98, लड़ना और शासन करने में खलीफा का हाथ बटाने तक ही सीमित था। ईरानियों का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक क्षत्र राज्य बना रहा और इस्लाम के अनुयायियों पर ईरानियों का गहरा प्रभाव पड़ता रहा। इब्न खल्दून, मुकद्दिमा, गोल्ड जिहर, मोहम्मद निश्चे, स्टूडियन, ली ही अ, पृष्ठ 278 पर उद्धृत।